दूसरा सलातीन 25वां बाब। और उसकी सल्तनत के नवे बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबुकदनजर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमा जन हुआ और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हिसार बनाए। और सिदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा किया और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खुरिश ना रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। उस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे और बादशाह ने बियाबान का रास्ता लिया, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरहू के मैदान में जा लिया और उसका सारा लश्कर उसके पास से परागंदा हो गया था। सो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में शाह बाबल के पास ले गए और उन्होंने उस पर फतवा दिया और उन्होंने सिदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया और सिदकिया की आंखें निकाल डाली और उसे जंजीरों से जकड़कर बाबल को ले गए। और शाह बाबल नबुकदनजर के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबल का एक खादिम नबूजारादान, जो जलौदारों का सरदार था, यरूशलेम में आया और उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया और कसदियों के सारे लश्कर ने जो जलौदारों के सरदारों के हमरा था यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया और बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबल की पना ली थी और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे उन सबको नबूजारादान जलोदारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलोदारों के सरदार ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करें और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावन के घर में थे और कुर्सियों को और पीतल के बड़े हौज को जो खुदावन के घर में था कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया और उनका पीतल बाबल को ले गए और तमाम देगें और बेलचे और गुलगेर और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहां काम आते थे ले गए और अंगीठियां और कटोरे गर्ज जो कुछ सोने का था उसके सोने को और जो कुछ चांदी का था उसकी चांदी को जलोदारों का सरदार ले गया। वो दोनों सतून और वो बड़ा हौज और वो कुर्सियां जिनको सुलेमान ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था इन सब चीजों के पीतल का वजन बेहिसाब था। एक सतून 18 हाथ ऊंचा था और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था और वो ताज 3 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिरदा गिर्द जालियां और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थीं और दूसरे सतून के लवाजिम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे। और जलौदारों के सरदार ने सराया सरदार काहिन को और काहिने सानी सफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्र था और जो लोग बादशाह के हजूर हाजिर रहते थे उनमें से 5 आदमियों को जो शहर में मिले और लश्कर के बड़े मुहर्रर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था और मुल्क के लोगों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले इनको जलोदारों का सरदार नबू जारादान पकड़कर शाहे बाबल के हजूर रेबला में ले गया और शाहे बाबल ने हमात के इलाका के रेबला में उनको मारा और कत्ल किया। सो यहूदा भी अपने मुल्क से असीर होकर चला गया और जो लोग यहूदा की सरजमीन में रह गए जिनको नबुकदनसर शाहे बाबल ने छोड़ दिया उन पर उसने जदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन को हाकिम मुकरर किया। जब जत्थों के सब सरदारों और उनकी सिपा ने यानी इस्माइल बिन नतनिया और यहुनान बिन किरिया और सराया बिन यहुमत नतुफाती और याजनिया बिन मेकाती ने सुना कि शाहे बाबल ने जदलिया को हाकिम बनाया है तो वो अपने लोगों समेत मिस्फा में जदलिया के पास आए और जदलिया ने उनसे और उनकी सिप्पा से कसम खाकर कहा, कसदियों के मुलाजिमों से मत डरो, मुल्क में बसे रहो और शाहे बाबल की खिदमत करो और तुम्हारी भलाई होगी। मगर सातवें महीने ऐसा हुआ कि इस्माइल बिन नतनिया बिन अली समा जो बादशाह की नस्ल से था अपने साथ 10 मर्द लेकर आया और जदलिया को ऐसा मारा कि वो मर गया और उन यहूदियों और कसदियों को भी जो उसके साथ मिस्फा में थे कत्ल किया। तब सब लोग क्या छोटे क्या बड़े और जत्थों के सरदार उठकर मिस्र को चले गए क्योंकि वो कसदियों से डरते थे। और यहूयाकीन शाहे यहूदा की असीरी के 37वें बरस के 12वें महीने के 27वें दिन ऐसा हुआ कि शाहे बाबल ओविल मरुदक ने अपनी सल्तनत के पहले ही साल यहूयाकीन शाहे यहूदा को कैदखाना से निकालकर सरफराज किया और उसके साथ महर से बातें की और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबल में थे बुलंद की। सो वो अपने कैदखाना के कपड़े बदलकर उम्र भर बराबर उसके हजूर खाना खाता रहा और उसको उम्र भर बादशाह की तरफ से वजीफा के तौर पर हर रोज रसद मिलती रही।